कृष्ण की जय, श्रीमती लक्ष्मी देवी की जय, निताय गौर प्रेमानंद समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादांग सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी परब्रह्मामे हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ श्री बेलवन के लक्ष्मी मंदिर में बैठे हुए हैं। द्वादश वनों में से एक है ये वन बेलवन या बिल्व वन। वैसे मूल शब्द है बिल्व, ये बिल्व वृक्ष है। हमारे मंदिर के प्रांगण में भी कृष्ण बलराम लैंड में जहाँ कार्यालय है उनके पीछे बेल का वृक्ष है। इसके फल बहुत मीठे होते हैं और इस फल का रस भी बहुत स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है। तो यहाँ बिल्व वन या बेल वन में भगवान आया करते थे गौओं को चरा के और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, जैसे कि वो अन्य वनों में भी जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ जब एक बार यहां पर आए थे तो उनके मित्र कृष्ण से कहने लगे कि कृष्ण अभी हमको बेल फल खाने की इच्छा हो गई है, हमें बेल खिलाओ। भगवान श्री कृष्ण तो अनादिकाल से अपने भक्तों की बल्कि समस्त जीवों की इच्छा पूर्ण करते आए हैं। शास्त्र में ऐसे बताया जाता है कि भगवान अपने अंश रूपी जीवों की पूरी पूरी इच्छा, सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं यहां भौतिक सृष्टि में, और उनके भक्तों की इच्छा तो पूरी करेंगे ही। अक्सर ग्वाल बाल कृष्ण से कुछ न कुछ मांगते। जैसे आपको पता है कि एक बार तालवन में जाने के लिए उन्होंने कहा कि हम वो ताल वृक्ष ताल फल खाना चाहते हैं, वो बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन वहां धेनुकासुर नाम का असुर बैठा हुआ है, वो किसी को खाने नहीं देता है। तो कृष्ण ने इच्छा पूरी कर दी। एक बार मथुरा और वृंदावन के बीच में बाल बालों को बहुत भूख लगी, उन्होंने कृष्ण से कहा भोजन की व्यवस्था करो, बहुत भूख लगी है। तो भगवान ने उन्हें याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास भेज दिया और अंततः जब प्रसाद मिला तो सारे ग्वाल बाल संतुष्ट हो गए। तो इसी प्रकार से यहाँ आने के बाद गौर वालों की इच्छा हुई कि वो बेल फल खाए, तो श्री कृष्ण को कदम्ब वृक्ष के नीचे बिठाया और कृष्ण भगवान बांसुरी बजाना शुरू कर दिए और अपने बांसुरी वजन से ही अनेक बेल फल यहाँ प्रकट हो गए जो बहुत स्वादिष्ट थे और सारे ग्वाल वालों ने बड़े आनंद से इन सारे बेल फलों का स्वाद लिया और उन्हीं झूठे हाथों से श्री कृष्ण को भी खिलाया। ये है ब्रज का भाव। हालांकि जो भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, कोई भोजन अर्पण किया जाता है, तो इसमें अनेक विधि विधान होते हैं और सेवा अपराध का भी विचार होता है। जो हमारे मंदिर में पुजारी विभाग में सेवा करते हैं, आप तो जानते ही हैं कि कितने कड़े नियम होते हैं। स्नान करके आना पड़ता है और अंदर जाने के पहले भी पूरी तरह से आचमन आदि करके शुद्धिकरण की क्रियाओं को करके ही हम अंदर जा सकते हैं और वहां पर भी कई नियम होते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। भगवान के भोग को स्पर्श करने के पहले ही यदि हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो तो शुद्ध होना चाहिए और अंदर जाने के बाद भी यदि किसी वजह से हम अशुद्ध हुए तो शुद्ध होकर फिर से कार्य करना चाहिए। तो इतने सारे नियम हैं। ये नियम ये भी है कि किसी दूसरे व्यक्ति को वो भोजन देखना भी नहीं चाहिए जो कि भगवान को अर्पण किया जा रहा है, क्योंकि उसके मन में वो इच्छा आएगी कि अरे ये तो इतना स्वादिष्ट है तो मैं खाना चाहता हूं। तो भगवान को भोग चढ़ाने के पहले हमें भोग खाने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। माधवेंद्रपुरी जब रेमुना गए थे और वहां पर उन्होंने स्वाद लेना चाहा उस खीर का जिसे अमृत केली कहा करते थे, क्योंकि वो इतना स्वादिष्ट था, जबकि वो खीर भगवान के लिए भोग चढ़ाने के लिए लाया जा रहा था, तो माधवेंद्रपुरी को तुरंत बहुत बुरा लगा कि अरे रे मैंने क्या कर दिया, भगवान को भोग चढ़ने के पहले उसे मैंने खाने का विचार किया, अरे रे मैं कितना अपराधी हूं। तुरंत वहां से वो निकल पड़े और चले गए बाहर बाजार में। परंतु भगवान की लीला तो अलग है। भगवान चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी प्रसाद को पाए और खास करके उन्होंने खीर की एक कटोरी चोरी कर दी अपने भक्त के लिए। पुजारी के स्वप्न में आके पुजारी से कहा कि ये कटोरी ले लो जो कि मैंने चोरी करके रखी है और वो माधवेंद्रपुरी नाम के मेरे भक्त को बाजार में जाके दे दो। तो पुजारी बीच रात में उठा, सपने में भगवान ने आदेश दिया, स्नान किया और देखा कि वास्तव में पर्दे के पीछे भगवान ने एक कटोरी खीर चोरी करके रखी थी, छुपा के रखी थी। तो माधवेंद्रपुरी को देकर आए। कहने का मतलब है कि भोग चढ़ाने की कितनी सारी विधियां हैं, परंतु यहां ब्रज में विधियों का अधिक विचार नहीं होता है। जब ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ जाया करते थे, दोपहर में यहां प्रसाद पाते थे यमुना के तट पर बैठकर भिन्न भिन्न स्थानों में, तो इसी प्रकार से कृष्ण के कर कमलों से कुछ भोजन लेते, अपने मुंह में डालते और कभी कभी अपने हाथों में जो है वो कृष्ण के मुंह में डाल देते, तो सब झूठे हाथों से कृष्ण को भी खिला देते। तो ये सब होता रहता था और कृष्ण बड़े आनंद से इसे स्वीकार करते थे। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कृष्ण विधि विधानों से बांधे नहीं जाते हैं, बल्कि वो अपने भक्तों के प्रेम से बांधे जाते हैं। और कोई शक्ति नहीं है और कोई पद्धति नहीं है, तरीका नहीं है जो कि कृष्ण को नियंत्रण में ला सके। हम देखते हैं कि हालांकि इतने नियम होते हैं, परंतु जब भक्ति होती है तो भगवान नियमों का विचार अधिक नहीं करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इस भक्त ने नियम का पालन नहीं किया है, नियम भंग किया है, नहीं। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। महाभारत में हम विदुर की पत्नी का उदाहरण देखते हैं, केले के छिलके खिलाते रहे वो कृष्ण को, और कृष्ण बड़े आनंद से केले के छिलके खाते रहे। उधर शबरी ने बेरों को चख के श्री रामचंद्र को खिलाया, तो बड़े आनंद से श्री रामचंद्र भगवान ने उन बेरों को खा लिया। कहने का मतलब है कि भगवान को कोई भी चीज अर्पण करने में महत्व की बात भक्ति है। हालांकि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति महत्वपूर्ण है इसलिए हम विधि विधानों का पालन ठीक से नहीं करेंगे, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। बड़े कट्टरता से विधि निषेधों का पालन हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हम साधन भक्ति के स्तर में हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ तो जब मैं भोग चढ़ाऊंगा तो मुझे उतनी कड़े नियम के पालन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें तो पूरे पूरे नियम का पालन करना चाहिए, साथ साथ हमारे हृदय में भक्ति को बढ़ाना चाहिए। परंतु बात यह है कि जिनके हृदय में स्वाभाविक आकर्षण, स्वाभाविक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति है, उनके लिए विधि विधानों का क्या कहना। वो कभी सोचते नहीं कि ऐसे भी कोई भगवान को कुछ दिया जाता है। ग्वाल वालों को ऐसे कुछ पता ही नहीं था, और नहीं वो परवाह करते अगर उनको जानकारी थी भी कि उनके मित्र भगवान है। वो केवल श्री कृष्ण को उनका मित्र समझते थे, बस, बहुत ही एक प्रिय मित्र। और इतना प्रेम करते थे श्री कृष्ण से कि कृष्ण के बिना वो एक क्षण भी रह नहीं सकते थे। जब रात को घर में जाते थे तो बहुत ही आतुर रहते कि कल कब सूर्योदय हो जाएगा, कब हम उठेंगे, स्नान करेंगे और जल्दी जल्दी से कृष्ण के साथ फिर से वन में जाएंगे, कौओं को चराएंगे, खूब खेलेंगे, साथ में भोजन खाएंगे, तरह तरह के फल आदि उनका स्वाद हम लेंगे साथ में। तो उनके मन में यही एक विचार था। तो यह है ब्रज का प्रेम कि कृष्ण इस प्रकार से छा जाते हैं भक्तों के चित्त में, और भक्त भी कृष्ण के चित्त में इस प्रकार से समा जाते हैं, छा जाते हैं कि भगवान और भक्त एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और ऐसे जब प्रेम और भक्ति का बंधन हो जाता है तो फिर विधि विधानों का कोई महत्व ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है उस जगह में। तो जब गोप और गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनकी सेवा करती थी, तो ऐसे कभी नहीं बताया गया कि ऐसे विधि विधान करके फिर कृष्ण को भोजन खिलाते थे, नहीं, बस स्वाभाविक प्रेम से खिलाते थे और कृष्ण स्वीकार भी करते थे। जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तैयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रहरितम अश्नामि प्रयतात्मनः, वो कहते हैं कि चाहे कोई मुझे पत्र पुष्प फूल जल आदि अर्पण करे, यदि उसके पास और कुछ भी नहीं हो, केवल इतना ही है उसके पास, इतना ही मुझे अर्पण करे, परंतु भक्ति भाव से अर्पण करे तो मैं इसे बड़े आनंद से स्वीकार करूंगा। तो भक्ति हमारा पत्र पुष्प फल जल आदि स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इनके भीतर जो भक्ति है उसे स्वीकार कर रहे हैं। दूसरे शब्द में हमारे भाव को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए भगवान को भावग्राही जनार्दन कहा जाता है। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयो तत्समं पुण्यं भावग्राही जनार्दन। जब हम कृष्ण को संबोधन करते हैं तो हम कभी कभी ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम कृष्णाय नमः, तो कृष्ण के लिए कृष्णाय कहा जाता है, ओम कृष्णाय नमः। लेकिन जब विष्णु की बात आती है तो हम कैसे कहते हैं, विष्णवे नमः कहते हैं, विष्णाय नमः नहीं कहते हैं, केवल कृष्ण के लिए कृष्णाय नमः, ये व्याकरण के नियम होते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया, चैतन्य भागवत में महाप्रभु ऐसा कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अनपढ़ होता है या व्याकरण के नियम नहीं पता होते हैं तो हो सकता है कि वो कभी कभी विष्णवे कहने के बजाय विष्णाय कहे, ओम विष्णाय नमः, गलत है। दूसरी ओर ऐसा कोई बहुत बड़े विद्वान हो सकता है व्यक्ति, जो सही तरह से कहता है ओम विष्णवे नमः, तो मूर्खो वदति विष्णाय, धीर मतलब जो धीर है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो भगवान का भक्त है, धीर वदति विष्णवे, सही बराबर उच्चारण करता है वो, परंतु उभयोः तत् समं पुण्यम्, दोनों को जो लाभ या पुण्य प्राप्त होता है समान है। क्यों? भावग्राही जनार्दन, क्योंकि भगवान जनार्दन या श्री कृष्ण हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। वो केवल ये नहीं देखते हैं कि व्यक्ति को व्याकरण कितना मालूम है, वो मंत्रों का उच्चारण किस ढंग से करता है, सही ढंग से उच्चारण करता है कि नहीं करता है, इसका संस्कृत उच्चारण ठीक नहीं है, भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान उन मंत्रों के पीछे जो भाव है, जिस भाव से उन मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, उस भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं सार ग्राही जनार्दन, क्योंकि भाव ही हमारे अर्पण का सार होता है। किसी चीज को दूसरे को हम देखते हैं, उसके पीछे कोई भाव होता है, वो भाव ही उस चीज का सार होता है। तो सार इस सृष्टि का कृष्ण है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, वो समझ लेते हैं कि सृष्टि में कृष्ण के अलावा कुछ है नहीं। तो इस सार को ग्रहण करने वाले लोगों को हंस कहते हैं या परमहंस कहते हैं। तो ऐसे जब परमहंस की स्थिति में व्यक्ति होता है, जो कृष्ण को ही जानता है, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं जानता, तो जब वो किसी चीज कृष्ण को अर्पण करेगा, भले बाएं हाथ से दे, भले झूठा होकर से भोजन खिलाए, भगवान बड़े खुशी से स्वीकार करते हैं। वैसे मर्यादा के या नियमों के आचार के हिसाब से हमें बाएं हाथ से खाना नहीं चाहिए, केवल दाहिने हाथ से खाना चाहिए, परंतु कृष्ण अपने ग्वालवाल मित्रों के साथ बैठते थे तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा? ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण दोनों हाथों में भोजन लेकर बैठे हैं, एक हाथ में दही और थोड़े फल हैं, दूसरे हाथ में थोड़ा चावल आदि कुछ है, और दोनों हाथ कभी ऐसे खा रहे हैं, कभी ऐसे खा रहे हैं। ये कोई तरीका है? कोई सभ्य व्यक्ति ऐसे करेगा? सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि एक हाथ से खाओ, बाएं हाथ से नहीं खाओ। तो ब्रह्मा जी सब देख रहे थे ऊपर से, ब्रह्मा जी का चकाचौंध हो गया, अरे ये भगवान हो सकते हैं क्या? भगवान को इतना नहीं मालूम, और ऐसा कुत्सित अन्न खा रहे हैं जो साधारण आदमी का अन्न खा रहे हैं। अगर ये वास्तव में भगवान है तो 56 भोग स्वीकार करेंगे, जैसे बड़े बड़े मंदिरों में करते हैं, स्वर्ग लोक में, वैकुंठ में आदि करते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे के रूप में बैठे हैं, ग्वाल बालों के साथ में बैठे हैं, कोई उनके मुंह में कुछ डाल रहा है, दूसरा बच्चा कोई तीसरे के मुंह में कुछ डाल रहा है, एक दूसरे से झूठा सब खाए जा रहे हैं, बाएं हाथ दाएं हाथ कुछ यहाँ शुचि का कोई विचार ही नहीं है, तो ये भला भगवान कैसे हो सकते हैं? और फिर ब्रह्मा जी वास्तव में भगवान का गौरव देखना चाहते थे, भगवान के दिव्य गुणों का प्रदर्शन देखना चाहते थे, फिर ब्रह्म विमोहन लीला हुई। तो खैर, भगवान श्री कृष्ण को जब उनके ग्वाल बाल मित्र भगवान न मानकर केवल मित्र मानते हैं और उनको ऐसे अर्पण करते हैं प्रेम से, अपना झूठा भी कुछ कभी कभी दे देते हैं, तो फिर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर भी ऐसे ही घटनाएं, ऐसे ही लीलाएं हुआ करती थी। बेलवन में श्री कृष्ण और ग्वाल बालों ने बहुत सारे बेल फल खाए और एक दूसरे को खिलाते रहे। तो ये है यहाँ का भाव, हम नकल नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं सोच सकते अब ऑल्टर में जाएंगे तो हम भी ऐसे अर्पण करेंगे, ग्वाल बालों के पद चिन्हों में चल के हम भी करेंगे, नहीं। हमारा स्थान और ग्वाल बालों का स्थान दोनों अलग है, वो सब सिद्ध है, हम केवल साधक हैं। साधकों को सिद्धों की नकल नहीं करनी चाहिए, उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए। पद चिन्हों में चलने का अर्थ है कि उनके आदेशों का पालन करें, उनके भाव को ग्रहण करने का प्रयास करें, परंतु उस भाव से जो उन्होंने कार्य किए उनकी नकल न करें हम, जब तक कि हमारा साक्षात्कार भी उस स्तर तक नहीं पहुंचे। तो खैर भक्ति रत्नाकर में भी हम देख रहे थे आने के पहले, भक्ति रत्नाकर में नारायणी शंकर चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि यहाँ पर वास्तव में चैतन्य महाप्रभु भी आए थे और बेलवन में उन्होंने लक्ष्मी देवी का दर्शन किया था यहाँ पर, और वो वर्णन करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। ये जो बेल फल खाने की लीला है इसका वर्णन नरहरि चक्रवर्ती इस प्रकार से करते हैं। रामकृष्ण सख सह बेलवन पक फल भुंज नहीं कौतुकेते। वो कहते हैं रामकृष्ण सखा सहे, राम मतलब बलराम, तो राम कृष्ण बलराम और कृष्ण अपने सखाओं के साथ में यहाँ पर आए, बिल्व बने थे, बिल्व वन के अंदर आए, पक्का बिल्व फल भूंजे महा कौतुकेते, पके हुए बिल्व फल जो है बड़े आनंद से स्वाद से उत्साह से उन्होंने खा लिया यहाँ पर इसी स्थान में। देवता पूजित बिल्व वन शोभ ब्रह्मलोक पूज्य है। फिर बिल्वन का महात्म्य बता रहे हैं नरहरि चक्र, कहते हैं देवता पूजित बिल्वन शोभामय, ये बिल्वन जो है इसकी शोभा अपार है, ये देवताओं द्वारा भी पूज्य है, देवलोक के भी निवासी हैं, देवता गण है, वो यहाँ बिल्वन की पूजा करते हैं, बहुत महान स्थान है बिल्वन। बिल्वन में श्री कृष्ण कुंड जी को स्नान सर्व पाप मुक्त से परम भाग्यवान। बिल्वन श्री कृष्ण कुंड जे करे स्नान, यहाँ पे श्री कृष्ण कुंड है तो जो वहां स्नान करता है तो सारे पापों से ऐसा भाग्यवान व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और यहां तक कि देवताओं की बात दूर है, ब्रह्मलोक के निवासी भी ऐसे व्यक्ति की पूजा करते हैं या उसे बहुत मानते हैं जो कि यहाँ एक बार भी आ चुका हो। एवं वन गमन है ब्रह्म लोके पूज्य हो, ब्रह्मा से लेकर जितने भी उनके साथ में निवास करने वाले लोग हैं ब्रह्म लोक के ऊपर जो कि इस ब्रह्मांड के भीतर सबसे ऊंचा ग्रह या लोक है, तो देखते हैं कौन जा रहे हैं अभी बिल्वन में। अच्छा कृष्ण बलराम मंदिर के ब्रह्मचारी सब गए हैं और हमारे लिए सब पूजनीय, सब नमस्कार करते हैं, ऐसे भक्ति रत्नाकर में कहा है, ये हमारा मत नहीं है। देखिए स्पष्ट कहा है एवं गमन ब्रह्म लोके पूज्य होए, इसका मतलब है कि कृष्ण बलराम मंदिर के जो ब्रह्मचारी आज आए हैं वो सब ब्रह्म लोक के निवासियों के लिए पूजनीय हो गए हैं, पूज्य हो गए हैं, क्योंकि वो बिल्वन आए हैं। उसी प्रकार से नरहरि प्रजादिक आगे कहते हैं वनम बिल्वनम नाम दशमम देव पूजितम, ये वनों में से दसवां वन है। जैसे आपको पता है द्वादश वन है, बारह मुख्य वन है, वैसे तो और कई हैं उपवन, परंतु मुख्य वन बारह हैं और उनमें से बिल्वन ये दसवां है। वनम बिल्वनम नाम दशमम देव पूजितम, देवताओं के द्वारा ये स्थान पूजित है। तत्र गत्वा तो मनुजो ब्रह्मलोक महियते, उसी बात को दोहराया गया है कि जो लोग मनुज जो मनुष्य यहाँ बिल्वन में आते हैं वो ब्रह्मलोक के निवासियों के लिए भी पूजनीय हो जाते हैं। तो ये है बिल्वन की महिमा। यहाँ कृष्ण प्रतिदिन आकर लीला करते थे। जब हम इस भूमि को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ का हर एक कण चिंतामणि है, यहाँ का हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष है, यहाँ की हवा, यहाँ की पानी, यहाँ की मिट्टी धूली सब पावन है, सब चिन्मय है, पवित्र है, हमारे उद्धार करने के लिए सक्षम है। ये भौतिक जगत नहीं है जहाँ हम बैठे हैं, ये साक्षात आध्यात्मिक जगत है। परंतु योग माया के आवरण के कारण हम सोच रहे हैं कि ये भी तो दूसरा गांव जैसे ही लग रहा है, क्या है। और जहां भी हम दूसरे जगह में जाते हैं, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्व में, पश्चिम में, इतने सारे कितने गांव देखे हैं हमने, ये भी तो वैसे ही गांव लग रहा है, वैसे ही पेड़, वैसे ही मिट्टी। लेकिन नहीं, ये पूरी तरह से दिव्य है। सारे ब्रज भूमि ये चिन्मय जगत है, चिंतामणि धाम है ये। कृष्ण जहां अपनी लीला करते हैं वो स्थान साधारण नहीं रह सकता। और ब्रजभूमि भगवान श्री कृष्ण के पर व्योम गोलोक वृंदावन से भिन्न नहीं है। ये ब्रजभूमि और वो ब्रजभूमि जो भगवान के धाम में है, वो दोनों अभिन्न है बिल्कुल। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहते हैं सदैव और वहां पर लीला करते हैं। इसका मतलब है कि अभी भी श्री कृष्ण यहाँ गाय चरा रहे हैं इस समय भी, वर्तमान काल में। तो जब हम कहते हैं कि श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व यहाँ गायों को चराने के लिए आते थे, हमें जानना चाहिए कि वर्तमान क्रिया का प्रयोग हमें करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण गायों को लेकर चराने जाते हैं, जा रहे हैं, क्योंकि ये लीला अभी भी चल रही है परंतु अप्रकट रूप में। हमारी वो आंखें नहीं है कि हम इन लीलाओं को देख सकें, समझ सकें। इसलिए जब हम इन तीर्थ स्थानों में आते हैं, लीला स्थलियों में आते हैं, तो हम भगवान के बारे में सुनते हैं, दर्शन करते हैं और ऐसे श्रद्धा के नेत्रों से हम देखने का प्रयास करते हैं। जब इस प्रकार से श्रद्धा से हम जानने का प्रयास करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब कृष्ण की कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से ये सब कुछ प्रकट हो जाएगा। वैसे जब हम वृंदावन शब्द का प्रयोग करते हैं तो कई लोगों के मन में केवल वृंदावन नगर पालिका की सीमा की जगह याद आती है कि यही वृंदावन है। लेकिन केवल इतना वृंदावन नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि द्वादश वनों में से एक वन वृंदावन है, बस वो एक ही वन वृंदावन, बाकी सब अलग है। एक दृष्टि से सही है कि 12 वनों में से एक वन का नाम वृंदावन है, परंतु जब हम वृंदावन शब्द कहते हैं इसका मतलब है कि पूर्ण ब्रज भूमि, सारे ब्रज भूमि को वृंदावन कहते हैं। अन्यथा ये कैसे संभव है कि वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। यदि ये बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर बाहर एक कदम भी नहीं लेते हैं, यहाँ तो कृष्ण रोज आया करते थे, चाहे वो बिल्व वन हो, ताल वन हो, मांडीर वन हो, जितने सारे वन है यहाँ पर, वो तो आते थे रोज। तो इसका मतलब है कि ये सब भी वृंदावन ही कहलाता है, वृंदा का वन। तो इसलिए इस सब वृंदावन भूमि में श्री कृष्ण सदैव विद्यमान है, जैसे कि वो परव्योम वृंदावन में सदैव विद्यमान रहते हैं। जब इस सृष्टि का नाश होगा तो अन्य वनों के साथ, जो ब्रज के अंदर हैं, जो अन्य वन, उनके साथ ये बेल वन का नाश भी नहीं होगा, ये शाश्वत रूप से विद्यमान रहेगा। बिल्व वन का और एक महत्व ये है कि यहां स्वयं श्रीमती लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं। क्यों कर रही है? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष सानिध्य वृंदावन की लीलाओं में चाहती है, परंतु नहीं पा रही है। जब श्री कृष्ण यहाँ पर लीला कर रहे थे तो लक्ष्मी देवी यहाँ पर आई, क्योंकि ये देखिए स्वर्गलोक के निवासी, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की बात दूर है, ब्रह्मा जी भी तो भौतिक जगत में रहते हैं, ये ब्रह्मलोक में जो कि भौतिक ब्रह्मांड के भीतर है, लेकिन वैकुंठ के निवासी भी ऐसी लीलाओं को कभी नहीं देखते हैं। जिस तरह की लीलाओं को भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर प्रदर्शित किए कराया, वो लीलाएं वैकुंठ जगत में भी नहीं दिखाई पड़ते, केवल गोलोक वृंदावन में। तो यहाँ देवतागण आते थे बार बार भगवान की लीलाओं को देखने के लिए, वो तो स्वाभाविक है, परंतु वैकुंठ लोक से वैकुंठ की महारानी लक्ष्मी देवी आई यहाँ पर वृंदावन की लीलाओं से आकर्षित होके। तो ये है वृंदावन की लीलाओं का माधुर्य। वैकुंठ ये ऐश्वर्य जगत कहलाता है और ब्रजभूमि या वृंदावन ये माधुर्य जगत कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं है, है, परंतु प्राधान्य माधुर्य का है। तो वैकुंठ जगत में भी माधुर्य है, परंतु प्राधान्य ऐश्वर्य का है। और जो माधुर्य वैकुंठ जगत में पाया जाता है, वृंदावन के तुलना में तो बहुत ही कम है, बहुत कम। क्योंकि जिस प्रकार से जितने निकटता से श्री कृष्ण यह अपने भक्तों के साथ बर्ताव करते हैं, वो वैकुंठ में नहीं पाया जाता। वैकुंठ जगत में सभी भक्त विष्णु या नारायण को भगवान मानते हैं और अपने आप को भगवान के दास समझते हैं। ऐसे कोई मित्र की भावना नहीं रहती है, पुत्र की बात तो दूर रही। यहाँ जितने भी वरिष्ठ गोप गोपियां थी वृंदावन में, वो सब कृष्ण को अपने पुत्र के समान मानती थी, परंतु वैकुंठ जगत में कौन है जो विष्णु को अपना पुत्र माने? ये तो संभव नहीं है वैकुंठ जगत में। नहीं कोई विष्णु को अपना मित्र मान सकता है। और रही बात माधुर्य रस या श्रृंगार रस की, यहां वृंदावन में लाखों लाखों गोपियां श्री कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थी, परंतु वैकुंठ जगत में केवल लक्ष्मी देवी ही भगवान को अपना पति मानती हैं और कोई नहीं। तो इसे हम समझ सकते हैं कि वैकुंठ जगत, हालांकि ये दिव्य धाम है, शाश्वत है, वैकुंठ जगत में भी केवल केवल शुद्ध भक्तों के लिए प्रवेश है, फिर भी वहां पर भक्तों का जो संबंध भगवान के साथ है वो इतना मीठा और इतना निकट नहीं है जितना कि वृंदावन में है। फिर भी हमें वैकुंठ के प्रेम को दीन दृष्टि से या नहीं देखना, हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, अरे अरे ये तुच्छ है, क्या है वैकुंठ, नहीं। बहुत ऊंचा स्थान है, भौतिक सृष्टि की तुलना में तो बहुत ही ऊंचा स्थान है। ये सब शुद्ध भक्ति का स्थान है। जितने भी वैकुंठ लोक हैं, सब जगह भगवान के शुद्ध भाव से प्रेम और सेवा चल रही है। हम केवल तुलनात्मक दृष्टि से कर रहे हैं वृंदावन और वैकुंठ। तो यहां जिस प्रकार से ग्वाल बाल बैठ के कृष्ण को अपना झूठा भोजन खिलाते, ये वैकुंठ में संभव ही नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे वो कृष्ण को पुकारे भी अपने नाम से पुकारे, कोई नहीं करता ऐसे वृंदावन वैकुंठ में। परंतु यहां कृष्ण को अपने नाम के बुलाने की बात तो दूर रही, कभी कभी उनके मित्र और उनके मित्र जो है बुरे नाम बुलाते थे कृष्ण को प्रेम से, जैसे आपस में दो मित्र एक दूसरे को हंसी मजाक में कुछ भला भला कह देते हैं। कभी कभी ऐसे मित्र कृष्ण को डांटते भी थे, अभी चले जाओगे वापस भोजन के लिए अपनी माँ के धमकी को सुनकर, तो हमारे साथ नहीं खेलना, फिर कल से अनुमति नहीं होगी हमारे साथ खेलने के लिए, तो यहां नहीं आना कल से। तो कृष्ण डर के रह जाते थे। ये सब वैकुंठ में संभव नहीं है। तो लक्ष्मी देवी सोच रही थी इन सब लीलाओं के बारे में, देख रही थी आश्चर्यचकित होकर, और विशेष करके जो वृंदावन की गोपियों का सौभाग्य था कि वो रासलीला कर रहे थे श्री कृष्ण के साथ, तो उनके मन में तीव्र इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी श्री कृष्ण की वृंदावन लीला में प्रवेश करना है। मैं तो वैकुंठ जगत में हूं, वहां की महारानी हूं, वहां की स्वामिनी हूं, परंतु मैं यहां आकर इस रस का भी स्वाद लेना चाहती हूं। श्री कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि मैं इनकी लीला में भी शामिल होना चाहती हूं, लेकिन नहीं हो पाई। उद्धव जी जब यहां आए थे तो उन्होंने सोचा था कि द्वारका के भक्त शुद्ध भक्त हैं श्री कृष्ण के, और हम भी द्वारका के हैं, हम जब वृंदावन जाएंगे कृष्ण कह रहे हैं हमें जाने के लिए, ब्रज के भक्तों को विशेष करके गोपियों को सांत्वना देने के लिए, तो मैं वहां जाऊंगा, सबको समझाऊंगा, थोड़ा कुछ शास्त्रों से कोई बातें सुनाऊंगा और उनका दुख कम कर दूंगा। लेकिन जब उद्धव यहां पर आए और गोप और गोपियों का भाव उन्होंने देखा तो बिल्कुल विस्मित हो गए कि अरे ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति तो कहीं नहीं मैंने देखा, इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं, नहीं मैं सोच सकता हूं। ये भक्त इतने महान है, इनका कृष्ण प्रेम इतना ऊंचा है, उन्नत है कि कोई नहीं समझ सकता इसे, कोई बराबर नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने कई चीजें कही, गुणगान किया ब्रजवासियों का, नायन श्रीअंग पुनिता करते प्रसाद है। उन्होंने कहा कि जो कृपा जो प्रसाद गोपियों को मिला वो न श्री अंग श्री अर्थात लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिला, हालांकि श्री लक्ष्मी देवी वैकुंठ की महारानी है और वृंदावन की गोपियां यहां क्या थी, गांव में रहने वाली बस महिलाएं थी, अपने अपने छोटे छोटे घरों में रहते थे। उनका काम क्या था, गायों का दोहन करना, अपने घर के काम करना, रसोई घर में रसोई करना, बच्चों का देखभाल करना, पति की सेवा करना, ये सब घरेलू कार्य में वो मग्न रहती थी। साधारण गांव की महिलाएं एक दृष्टि से देखा जाए तो, परंतु उनको ऐसी कृपा मिली उद्धव जी कह रहे हैं जो कि लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिला। तो लक्ष्मी देवी सोच रहे थे कि कैसे मैं प्रवेश कर पाऊंगी, तो वो यहां पर आई ब्रज में और कृष्ण से कहा कि मैं आना चाहती हूं अंदर आपकी लीला में। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, यहां आना मुश्किल है, जब तक यहां जिसको ब्रज में प्रवेश करना है, ब्रज का भाव लेकर आना है, वैकुंठ की महारानी होकर नहीं आ पाओगे, यहां पर यह राधा रानी के अधीन होकर आना पड़ेगा। ऐसे कई अन्य भक्त भी आना चाहते थे, जैसे स्वयं शिव जी हैं, शिव जी आना चाहते थे, भगवान की वृंदावन लीलाओं के प्रति इतने आकर्षित हुए थे कि वे यहां आना चाहते थे, परंतु जब आए तो उनको बताया गया कि जी नहीं, आप तो पुरुष हैं, इसलिए जब तक आप गोपी नहीं बनेंगे आप अंदर नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब ये है कि पुरुष होने के नाते जो पुरुषत्व की भावना है उसकी बात हो रही, केवल बाहरी देह की नहीं, पुरुषत्व या जो प्रभुत्व की भावना, पुरुषत्व की भावना अर्थात भोग करने की भावना, परंतु ब्रज में भोक्ता केवल एक ही है और वो है श्री कृष्ण, अन्य जितने भी हैं वो सब भोग्य हैं। तो शिव जी ने कहा मैं क्या करूं, मैं हूं तो पुरुष देह में क्या कर सकता हूं, तो ठीक है तुम मानसरोवर में जाओ, यहां से ज्यादा दूर नहीं है, इस तरफ ही है ये भांडीरवन मानसरोवर बेलवन, मानसरोवर में जाओ, वहां स्नान करो और फिर तुम्हें गोपी का शरीर मिलेगा। तो फिर शिव जी गए मानसरोवर में, स्नान किया और गोपी का देह मिल गया, और फिर अभी वो गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है वृंदावन में, बहुत प्रसिद्ध है इस नाम से गोपेश्वर महादेव। उसी प्रकार से नारद जी भी आए थे। नारद जी ने वृंदावन के बारे में बहुत सुना था। नारद जी सोच रहे थे क्या करना चाहिए, कैसे अंदर जा सकते हैं, प्रवेश देख सकते हैं भगवान की सुंदर लीलाओं को, लेकिन प्रवेश नहीं मिला। तो वृंदा देवी के शरण में गए नारद जी। तो वृंदा देवी ने कृपा की, यहां से वृंदा देवी की अध्यक्षता में चल रहा है। वृंदा देवी श्री श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का आयोजन करती हैं, सारी व्यवस्था करती हैं, मैनेजमेंट, लीला मैनेजमेंट, सारे लीलाओं का व्यवस्थापन वो करती हैं कि राधा कृष्ण के लीलाओं के लिए क्या आवश्यक है, किस प्रकार का वातावरण चाहिए, कैसा माहौल चाहिए, कैसा मौसम चाहिए, कौन से पदार्थ चाहिए, सारी व्यवस्थाएं वृंदा देवी करती हैं। इसलिए नाम है वृंदावन, उन्हीं का वन है ये। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाके कुसुम सरोवर में स्नान कर लो। फिर नारद जी ने कुसुम सरोवर में स्नान कर लिया और उनको फिर एक उपयुक्त देह मिला, फिर यहाँ के ब्रज लीलाओं का दर्शन कर पाए। और फिर कृष्ण ने उनसे कहा कि जाओ अब तुम एक ग्रंथ लिखो भक्ति के ऊपर। तो नारद जी फिर कुसुम सरोवर के पास में ही नारद वन में, जिस स्थान को अब नारद वन कहते हैं, वहां पर गए और वहां पर बैठ के तपस्या किया उन्होंने। और फिर वहां पर उन्होंने नारद भक्ति सूत्र इस ग्रंथ की रचना की। और वहां पास में नारद कुंड है। अभी ब्रह्मा जी भी आना चाहते थे ब्रज में, फिर अंततः उन्होंने देखा, एक बार तो आए मोहित हो गए थे ब्रह्म विमोहन लीला, और वो समझ गए थे कि श्री कृष्ण क्या है। परंतु ब्रज लीला में प्रवेश करने के लिए उन्होंने सोचा था कि मैं पहाड़ बन जाऊंगा। देखिए वृंदावन का भाव इतना श्रेष्ठ है कि ऐसे महान व्यक्ति जैसे ब्रह्मा, शिव जी, उद्धव आदि अपने आप को बहुत तुच्छ रूप में यहाँ जन्म लेने के लिए इच्छा वो रखते हैं। तो शिव जी भी नंदीश्वर बन के रहे वहां नंदगांव में पर्वत के रूप में रहे हैं, और ब्रह्मा जी यहां बरसाना में आए पर्वत के रूप में, वहां पे विराजमान है। उद्धव एक घास का तिनका बनना चाहते थे वृंदावन में, ताकि ब्रजवासियों के, विशेष करके गोपियों के चरण धूलि उनके सर पे पड़े। तो ब्रह्मा जी वहां पर्वत बन के खड़े हैं, शिव जी भी पर्वत बन के खड़े हैं, उद्धव जी घास का तिनके बन के रहे हैं, और लक्ष्मी जी अभी तक यहां तपस्या कर रही हैं कि कब वो समय आएगा जबकि हम श्री कृष्ण की लीला में शामिल हो पाएंगे। तो हालांकि वो वैकुंठ की महारानी है, देखिए लक्ष्मी देवी का स्थान कितना ऊंचा है कि वो सदैव भगवान श्री हरि की सेवा में रत रहती हैं, उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। पाद सेवनम के आदर्श उदाहरण है लक्ष्मी देवी। उनका निवास स्थान भगवान श्री हरि का वक्ष स्थल है, वो श्री वत्स के रूप में निवास करती हैं भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर। भागवत में ऐसे भी बताया गया है कि वो श्री हरि के वैजयंती माला में भी निवास करते हैं, करती हैं। 2400 घंटे हमेशा कृष्ण की सेवा में रहती हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी देवी जब यहां आना चाहती है तो प्रवेश नहीं कर पाती है। बहुत साल लक्ष्मी देवी ने तपस्या की लेकिन प्रवेश नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष सानिध्य जिस प्रकार से गोपियों को मिला, लक्ष्मी देवी को नहीं मिल पाया। इसलिए लक्ष्मी देवी बस यह रह के अब उस भाव का अनुशीलन करने का प्रयास कर रही हैं। जब कालिया दमन की लीला हो रही थी और भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य करना शुरू कर दिया कालिया के फणों के ऊपर, तो करते करते कालिया की बुरी दशा हो गई। कालिया तो बहुत शक्तिशाली था और भगवान श्री कृष्ण बाह्य दृष्टि से एक कोमल छोटे से बच्चे दिख रहे थे, परंतु जैसे हल्के हल्के से कृष्ण नृत्य कर रहे थे फणों के ऊपर, तो हर एक कदम जो श्री कृष्ण ले रहे थे वो कालिया के लिए ऐसे लग रहा था कि मानो कोई बहुत पहाड़ पड़ गया उनके ऊपर, पहाड़ जैसा लग रहा था और प्राण मृत्यु के बहुत निकट पहुंच गए थे, मृत्यु होने ही वाली थी कि कालिया की पत्नियां सब आई वहां पर कृपा याचना करने लगे कृष्ण के सामने, बहुत सुंदर स्तुति की कृष्ण की और प्रार्थना भी की और पूरे प्रसिद्ध श्लोक भी उन्होंने कहा, कस्यानुभव देव विद्म तवांग्रेणु स्पर्शाधिकार यद्वांचराश्रीवाचरतपो विहाम कामान सुचिवकृतव्रता। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, हम नहीं जानते हैं कि ऐसे क्या तपस्या, क्या पुण्य, क्या धार्मिक कार्य आदि हमारे पति ने किए होंगे जिस कारण उन्हें ये कृपा मिली है, जो कि लक्ष्मी देवी को अनेकों अनेकों वर्ष तपस्या करने के बाद नहीं मिल पाए। एक सांप एक ईर्ष्यालु पशु माना जाता है। किसको सांप का जन्म मिलता है? ये बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति है, बिना वजह दूसरों से द्वेष करता है, दूसरों को अपशब्द बोलता है, ऐसे व्यक्ति को सांप का शरीर मिलता है। सांप एक ऐसा पशु होता है जो बिना कारण डस देता है किसी को। तो ऐसा पशु, ऐसे व्यक्ति को जब सांप का जन्म मिला है तो अवश्य उसने पिछले जन्म में कोई भयंकर पाप किए होंगे, इसलिए तो अभी सांप का जन्म मिला है। अब कालिया सांप है तो उसने बहुत बड़ा अपराध किया होगा पहले भी, इसलिए सांप का जन्म मिला है। परंतु ये अहो सौभाग्य कैसे मिला कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श उसके सर से हुआ, सरपणों से हुआ? ये तो लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिल रहा है। लक्ष्मी देवी जो कि ललन आदि की सबसे ऊंची स्त्री है, महिला है, आदर्श महिला है, इस सारे भौतिक आध्यात्मिक सृष्टि में जहां भी देखें, वैकुंठ जगत हो या भौतिक जगत हो, तो ऐसे महान श्रीमान श्रीमती लक्ष्मी देवी जब सुचिरम दृढ़व्रता है, सुचिरम मतलब बहुत लंबे समय तक वो तपस्या कर रही है और उनको ये चरण भूमि प्राप्त नहीं हुई, ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हुई, तो ये हमारे पति को कैसे प्राप्त हो गया, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस उदाहरण से हम जान सकते हैं कि लक्ष्मी देवी समझ पा रही है कि ब्रज की लीलाएं कितने मधुर हैं, किस भाव से यहां प्रवेश करना चाहिए। फिर भी यहां बैठ के कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी जी अभी विराजमान है यहां पर, अभी भी है वर्तमान काल में। वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि यदि किसी को व्रज में प्रवेश करना है, व्रज में प्रवेश करना अर्थात केवल शरीर से नहीं, चित्त से वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश करना है, तो हमें श्रीमती राधा रानी और उनके सेविकाओं के या सेवकों के अनुयायी बनना चाहिए, इसके बिना ये संभव नहीं है। और श्री राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं इस कलयुग में। चैतन्य महाप्रभु का अवतार बहुत ही विशेष है। राधा कृष्ण प्रणाम विकृतिर, विकृति जो राधा कृष्ण का प्रेम है, ये चिन्मय है, पुरुष स्त्री का संबंध नहीं है। लादिनी शक्ति रस्माद, ये लादिनी शक्ति से उत्पन्न होता है। एकात मानव अपिभुवि पुरा देह भेदम कतौतौ, वैसे राधा कृष्ण तो दो है, राधा और कृष्ण, परंतु अभी जब भूमि भूलोक इस पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए हैं तो एक होकर आए हैं। एकात्मा नाम अपिभुवि पूरा देह भेदम गतौतौ, पहले देह भेद था लेकिन अभी एक है। और वही श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, तो राधा रानी के भाव को और उनके कांति को स्वीकार करके यहाँ पर आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का पालन करके, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में शामिल होकर हम ब्रज में प्रवेश कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेने का कारण यह है, सारे दुनिया को ब्रज में प्रवेश करना, इसके लिए कराने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। ब्रज में प्रवेश कराना मतलब ब्रज के भाव का अनुशीलन कराने के लिए सिखाना सभी को, बहुत आसान तरीका है। चैतन्य महाप्रभु ने वो रास्ता कलयुग के लोगों के लिए दिया है जो कि लक्ष्मी देवी के लिए भी उपलब्ध नहीं था उस समय आसानी से, और वो है नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि केवल नाम संकीर्तन करने से जो इस युग धर्म है, हम अच्छी तरह से इस भाव को स्वीकार कर पाएंगे। जब चैतन्य महाप्रभु अपने व्याकरण की विद्वान की लीला कर रहे थे नवद्वीप में, तो किसी को ये पता नहीं चला कि ये श्री कृष्ण है स्वयं, और किसी को ये भी नहीं पता चला कि आगे चल के ये भक्ति की लीला भी प्रकट करने वाले हैं। जब वो गया गए अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए, वहां ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ले ली, और लौटने के बाद जो परिवर्तन दिखाई पड़ा नवद्वीप के निवासियों को, उससे वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे यही निमय पंडित जो पहले भक्तों का मजाक उड़ाया करते थे, भक्तों की टीका करते थे, आज यही निमय पंडित भाव विभोर होकर प्रेमावेश में महामंत्र का हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किए जा रहे हैं। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण के विरह में पीड़ित लग रहे हैं, ये कैसे क्या चमत्कार है ये। तो कृष्ण आए लौट के नवद्वीप, सभी ने स्वागत किया उनका नवद्वीप में, और इस भाव को देखकर सारे भक्त सोचने लगे अरे ये क्या हो गया, और भक्त समाज में बात फैल गई, अरे देखा निमय पंडित का कैसे परिवर्तन हुआ, वो तो भक्त बन गया और एक साधारण भक्त नहीं। अच्छा, तो और जानना चाहते थे सभी भक्त, तो महाप्रभु के पास आए। तो निमय पंडित ने उनसे कहा कि आज नहीं कल आना शुक्लम्बर ब्रह्मचारी के घर में। तो शुक्लम्बर ब्रह्मचारी एक ब्राह्मण भक्त थे, बहुत तपस्वी थे, भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करते थे, जगह जगह जाते थोड़ा कुछ चावल आदि मिल जाता माधुकरी करते, और फिर कुछ पका लेते भगवान कृष्ण को अर्पण करके, फिर भोजन ग्रहण कर लेते प्रसाद। भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो शुक्लम्बर ब्रह्मचारी को महाप्रभु ने चुना कि जैसे ही उन्होंने अपने भक्ति को प्रकट किया, सबसे पहले शुक्लम्बर ब्रह्मचारी को उन्होंने शामिल कराया उनकी योजना में। शुक्लम्बर ब्रह्मचारी के घर में कार्यक्रम हुआ, इष्ट गोष्ठी हुई, निमय पंडित ने इष्ट गोष्ठी बुलाई सबको बताने के लिए कि कृष्ण भक्ति कितना महत्वपूर्ण है, सभी को करना चाहिए। वैसे शुक्लम्बर ब्रह्मचारी कृष्ण लीला में याज्ञिक पत्नियों में से एक हैं, जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके थे कि कृष्ण ने ग्वाल बालों को वहां भेजा था, तो उनमें से एक शुक्लम्बर ब्रह्मचारी है। तो शुक्लम्बर ब्रह्मचारी के घर में सभी एकत्र हुए, तो महाप्रभु ने आपको अपने हृदय की पीड़ा बताई कि कहाँ है कृष्ण, और उनके भाव को देखकर सभी इतने प्रभावित हो गए कि वहां बस ऐसे लग रहा था कि कृष्ण प्रेम के आंसू का समुद्र बह रहा है। और उस दिन से श्रीवास ठाकुर के आंगन में रोज रात को संकीर्तन हुआ करता था। शुक्लिंग ब्रह्मचारी के ऊपर बड़ी कृपा की महाप्रभु ने, और उनके हाथ से कई बार उन्होंने भोजन लिया। एक बार उनके घर में गए, चैतन्य भागवत में ऐसा वर्णन है कि शुक्लिंबर, आज मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, मेरे लिए भोजन बनाओ, प्रसाद बनाओ। नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्तों के साथ में वहां गए और वहां प्रसाद पा लिया। एक बार उन्होंने देखा कि रात के कीर्तन में शुक्लिंबर ब्रह्मचारी बहुत उत्साह से बड़े भाव भोर होकर नृत्य कर रहे हैं, और उनके गले में एक माला है, जैसे हम लोग जब माला अपने गले में लटकाते हैं, वैसे उनके गले में थैली थी जिसमें कि उनकी भिक्षा का जो भी चावल आदि है वो सब कच्चा चावल वो सब पड़ा रहता था, या पोहा आदि है वो रहता था। तो महाप्रभु ने बुलाया कि आओ आओ शुक्लिंबर, ये क्या है अंदर, देखो तुम्हें अर्पण करना चाहिए। तो शुक्लिंबर तो हिचकिचा रहे थे कि ये क्या, ये थोड़ी दे सकते हैं महाप्रभु को। तो महाप्रभु ने जबरदस्ती से छीन लिया, जिस प्रकार से श्री कृष्ण सुदामा के भेंट को छीन लिया था। हालांकि सुदामा देना नहीं चाहते थे क्योंकि ये तो साधारण भोजन था, फिर भी विमल पंडित ने छीन लिया और सबके सामने खा लिया। और कोई कुछ कह नहीं पा रहे थे, डर रहे थे महाप्रभु से, और महाप्रभु जितना भी थैली में था सब खा लिया। कम से कम द्वारका में जब श्री कृष्ण सुदामा से ले रहे थे तो एक बार खा लिया तो रुक्मिणी देवी हैरान हो गई, दूसरी बार जब खाने के लिए गए तो रुक्मिणी देवी ने रोक लिया कि बस आपने एक बार खा लिया तो बहुत हो गया, अब और खाते रहेंगे तो इतना धन इसे देना पड़ेगा कि मैं भी नहीं दे पाऊंगे, कहां से देंगे, क्योंकि इतना ऋणी हो जाएंगी मैं इसके प्रति। तो आपकी कृपा जो है वो अपार है, सुदामा के ऊपर आपने ऐसी कृपा की। तो भगवान ने केवल एक बार सुदामा का पोहा खा लिया था, लेकिन वहां शुक्लिंबर ब्रह्मचार्य का जितना भी था थैली में सब खा लिया। तो हर एक ऐसी लीला है जिसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, और इस लीला को कहने का उद्देश्य यह है कि हम जान सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु किस आंदोलन का उद्घाटन करना चाह रहे थे, जिस आंदोलन के माध्यम से यहां हम उसी ब्रज प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं ब्रज लीलाओं में हम प्रवेश कर सकते हैं जिनके लिए लक्ष्मी देवी यहां पर तपस्या कर रही हैं अनेक वर्षों से। तो ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 17वें अध्याय में है। कोलो अर्थ विवरण, फिर ऐसी कई लीलाएं विमल पंडित ने पहले भी की थी, उसके बाद उन्होंने शुक्लिंबर ब्रह्मचारी का तंडुल या जो कच्चा चावल है वो खा लिया, बड़े आनंद से प्रेम से खा लिया, जैसे कि उन्होंने विदुरानी से केले के छिलके खाए थे, या कच्चा चावल महाप्रभु ने बड़े आनंद से खा लिया। और उसके बाद हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक श्लोक ही तो आप जानते हैं, इस श्लोक का विवरण महाप्रभु ने किया। अब ये श्लोक हम बोलेंगे, आप बार साथ में बोलिए, साथ में है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम अन्यथा। तो इसका अर्थ तो आप सब जानते हैं कि इस कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, और यही एकमात्र रास्ता है। केवलम हरि नाम युग केवलम, कि हरि नाम के अलावा दूसरा कोई मार्ग भगवान को प्राप्त करने का नहीं है। कलि काल नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम होते हो सर्व जगत अनुस्तार। कलयुग काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण नाम का अवतार लिया है, तो हरि नाम ही कलयुग में भगवान का अवतार है। कई बार लोग पूछते हैं कि ऐसे कहा गया है, भगवान कहते हैं गीता में यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम से जामि, उनकी धर्म की ग्लानी होती है अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं अवतार लेता हूँ, तो अब तो इतना अधर्म हो रहा है तो भगवान ने अवतार क्यों नहीं लिया है। भगवान तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार ले चुके हैं, और साथ साथ विशेष करके नाम हरि नाम का अवतार हो चुका है, और इस हरि नाम को स्वीकार करके जितना भी अधर्म है उसका नाश हो सकता है। दाढ़े लागी हरि नाम उक्ति तीन बार, जड़ लोग बुझाई तो पुनः एवो कार। तो यह इस श्लोक में एव हरि नाम एव एव केवलम है ना, तो ये एव शब्द तीन बार दोहराया गया है केवल जोर देने के लिए, क्योंकि तीन बार एव शब्द कहने से यह हरि नाम जो शब्द है ये भी तीन बार दोहराया जाता है, ताकि जो आम आदमी है वो समझ ले कि ये हरि नाम कितना महत्वपूर्ण है। जब किसी चीज को हम महत्व देना चाहते हैं तो तीन बार कहते हैं, एक बार कहने से आदमी समझता नहीं है, दूसरी बार कहने से एक कान से अंदर दूसरे कान से बाहर जाता है, लेकिन तीन बार कहने से कुछ तो रह जाता है, व्यक्ति समझ लेता है कि हाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो शास्त्र में ऐसे अक्सर देखा जाता है कि जिस बात के ऊपर बहुत जोर देना चाहते हैं भगवान या जो ऋषि हैं जिन्होंने ये ग्रंथ को लिखा है, तो वो उसको तीन बार दोहराया करते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में जो कि बृहद नारदी पुराण से है, इसमें भी ये हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, ये एव शब्द से जो कि हरि नाम का है, इसे समझ सकते हैं कि तीन बार बहुत महत्वपूर्ण है। केवल शब्द पुनरपि निश्चय करण ज्ञान योग तप कर्म आदि निवारण, केवल शब्द से हम जान सकते हैं कि यह केवल हरि नाम है, यह न ज्ञान कांड के लिए स्थान है, न कोई हमें कर्म कांड के लिए स्थान है, योग कांड के लिए स्थान है, जितने भी अन्य पथ हैं आत्म साक्षात्कार के लिए इनका कोई स्थान नहीं है, ये केवल शब्द का तात्पर्य है। अन्यथा जो माने तारा है मालकम स्थान नहीं 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 तीन एव कान, और नहीं 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 ये तीन बार कहने से इसका तात्पर्य होता है कि जो भी कोई भक्ति के अलावा ये हरि नाम के पद के अलावा अन्य पद को स्वीकार करता है तो वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, उसका उद्धार नहीं हो सकता है। तृण होते नीचे होना सदा लभमान अपनी नीर अभमान अन्य दिव्यमान, तृण होते नीच होना सदा लवे नाम, तो नाम लेना है तो कैसे लेना चाहिए, महाप्रभु कहते हैं क्योंकि इसके बिना हम ब्रज भाव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए, तृण होते एक तृण के समान नीच अपने आप को समझ के सदा नाम लेना चाहिए, महाप्रभु कहते हैं। अपन निर अभिमानी अन्य दिव्यमान, अपने आप को निर अभिमानी बनाकर अन्यों को पूरा सम्मान देकर हमें सदैव हरि नाम लेना चाहिए। तरु समय सहिष्णुता वैष्णव को दे भस्मा पर हमें काके किछु ना बोली दे, कहते हैं तरु समय एक वृक्ष के समान बनना चाहिए, सहिष्णुता वैष्णव कोरिबे कि वैष्णव को चाहिए कि वृक्ष के समान वो सहनशील बने, भर्त्सना तारने काके किछु न बोली दे, देखिए बात महत्वपूर्ण बात है, कोई भर्त्सना करे हमें डांटे कुछ कहे दुःशब्द किछु न कहिबे, कुछ नहीं कहना सहन करना, महाप्रभु ऐसे कहते हैं क्योंकि ऐसा करके हम हरि नाम सदैव ले पाएंगे। ये दुनिया में देखा जाता है कि स्वाभाविक रूप से व्यक्ति प्रतिकार करता है, इस दे देता है। यदि कोई उसको उसकी भर्त्सना करता है, उसका तारण करता है, कोई उसे कुछ अपशब्द बोल देता है, तो व्यक्ति को तुरंत गुस्सा आ जाता है और वो कुछ उल्टा ही कह देता है या कर देता है। परंतु महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, वैष्णव को चाहिए कि एक वृक्ष के समान वो बहुत सहनशील बने। वृक्ष के पास कितने लोग आते हैं, कोई शाखा काट देता है, कोई फूल निकाल लेता है, कोई फल निकालता है, कभी कभी वृक्ष को ही काट देते हैं, लेकिन वृक्ष कभी विरोध नहीं करता, सहन कर लेता है। तो उसी प्रकार से महाप्रभु कह रहे हैं कि वैष्णव को चाहिए कि वो सहन करे। काटिले हो तोरु जानो किछु ना बोलाए, कोई उनको काटे भी तो वृक्ष कुछ नहीं बोलता, सुकाइए मरे तबे जल ना मगाए। और यदि वो सूख के मर रहा है वृक्ष, पूरी पानी पानी कहकर नहीं पुकारता है। आपने सुना होगा कि आदमी जब मन में जा रहा है तो पानी पानी कहता है ना, और लोग आके उसे पानी पिलाते हैं अंतिम समय। लेकिन वृक्ष मरते दम तक भी किसी को कष्ट नहीं देगा कि मुझे पानी पिलाओ, ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं। एवं तो वृक्षम कार्य किछु न लागिब, अरचित वृत्ति किंबा शाक फल खाइब। इस प्रकार से वैष्णव को किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अयाचित वृत्ति मतलब किसी से याचना नहीं करना है, कुछ मुझे ये दो मुझे वो दो, ये याचना न के बिना जो शाक फल आदि जो साधारणता से उपलब्ध है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष भक्ति धर्म पोष, सदा नाम लोभ यथा लभेते लाभेते संतोष। ऐसे हरिनाम लेते लेते जो भी लाभ अपने आप से आ रहा है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, और ऐसे आचरण से हमारे भक्ति धर्म का पालन हमें करना चाहिए। और फिर महाप्रभु ये हमारे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण श्लोक है इसको कहते हैं, क्योंकि हरिनाम तो उद्धार का एकमात्र पथ है। विशेष करके ब्रज भाव में प्रवेश करने के लिए हरिनाम ही सर्व कुछ है, सब कुछ है। परंतु हरिनाम हर समय लेने के लिए क्या करना चाहिए, यह वो बताते हैं। ये श्लोक आप सब जानते हैं, चलिए साथ में इसका उच्चारण करते हैं।
मान देना कीर्तनीय सदा हरि।
जो अपने आप को तृण से भी अधिक नीच समझता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहनशील है, जो कभी भी मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करता है और सदैव अन्यों को मान सम्मान देने के लिए तत्पर रहता है, केवल ऐसा ही व्यक्ति सदैव हरि नाम का उच्चारण कर पाएगा।
ऊर्ध बाहु कर कहो सुनो सर्व लोक, मान सूत्र गांठे पैरों कंठे ए श्लोक।
ऊर्ध बाहु करी कहो सुनो सर्व लोक, तो फिर महाप्रभु कहते हैं मैं हाथ ऊंचे करके हाथ ऊपर करके मैं कह रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए सब लोग। नाम सूत्र गांठी पर कंठे इस श्लोक, तो इस श्लोक को एक धागे के ऊपर बांध कर अपने गले में ये टांग दो, इसको लगा दो, ये हरे नाम हरे नाम हरे नाम है। इस श्लोक को
त्रिनादपि सुरुचेन श्लोक
प्रभु आज्ञा करो श्लोक आचरण, अवश्य पढ़े तब श्री कृष्ण चरण।
प्रभु आज्ञा करो ये श्लोक आचरण, तो जैसे महाप्रभु ने आज्ञा दिया है अगर वैसे हम आचरण करेंगे, अवश्य पढ़े तब श्री कृष्ण चरण, तो अवश्य ही हम श्री कृष्ण के चरण कमलों को करेंगे। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन करना आरंभ कर दिया। तो नाम लेने में रुचि होनी चाहिए, तब हम संकीर्तन अच्छी तरह से कर पाएंगे। यदि हम सबको ब्रज के सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य को प्राप्त करना है, इस ब्रज प्रेम को प्राप्त करना है जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जिसके लिए स्वयं श्रीमती लक्ष्मी देवी भी लालायित हैं, तपस्या कर रही हैं, और महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि उन्होंने हमें ऐसे एक मार्ग दिया है जिसमें हमें ऐसी कोई तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल हरि नाम लेकर हम उसे ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस हरिनाम संकीर्तन को सदैव लेने की योग्यता क्या है? ये चार चीज है। त्रिनाद अपि सुने चेना, तरोर अपि सहिष्णुना, अमानीय और मान देना। इन चार गुणों का हम अनुशीलन करते रहेंगे तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अवश्य ही हम श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करेंगे, विशेष करके वृंदावन में। तो ये हम सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब है कि हम सबको वैष्णवों के दासों के दास के रूप में रह के अपनी भक्ति करनी चाहिए, अहंकार का पाकट्य नहीं होना चाहिए, अपने सेवा भाव का अनुशीलन करना चाहिए जैसे कि महाप्रभु ने सिखलाया है, और वैसे हरिनाम का आश्रय लेकर अवश्य ही अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। ये है हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन की शक्ति कि वो पापी से पापी व्यक्ति को सबसे ऊंचा व्यक्ति बना सकता है, केवल हरिनाम कीर्तन करके। यदि कोई व्यक्ति इन चार चीजों को करने के लिए तैयार हो तो केवल हरिनाम के द्वारा वो सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। क्या टाइम हुआ? अच्छा, इतना टाइम चला गया।
लक्ष्मी जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं तो ऐसा वर्णन है क्या कि वो तपस्या करके फिर वो भगवान के लीला में प्रवेश करेंगे?
प्रश्न ये है कि लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही हैं, तो क्या ऐसा वर्णन है कि तपस्या करने के बाद फिर वो भगवान की लीला में प्रवेश करेंगी? ऐसा वर्णन नहीं है कि वो करेंगी, कर रही हैं, ये वर्णन है।
आपने कहा था कि वैकुंठ लोक में भी, वैकुंठ लोक बराबर है, अपनी जगह पे सही है। अगर मान लीजिए कि भक्तों को ऐसे चॉइस दिया जाए कि आपको वैकुंठ लोक मिलेगा और बाद में जब आप योग्य बनेंगे तो गोलोक धाम मिलेगा, तो वैकुंठ धाम स्वीकार करना चाहिए नहीं?
प्रश्न ये है कि किसी को यदि पूछेगा कि आप वैकुंठ धाम जाओ, फिर वहां से फिर आगे चल के गोलोक में चलना, बात ये है कि वैकुंठ धाम में जाने के लिए एक प्रकार का भाव चाहिए, गोलोक वृंदावन में जाने के लिए एक दूसरे प्रकार का भाव चाहिए। यदि हम वैकुंठ जाना चाहते हैं तो वैकुंठ के भाव का अनुशीलन हमें करना चाहिए। दोनों भावों में भिन्नता है। हालांकि आध्यात्मिक जगत में कोई भी व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, परंतु सामान्यतः जो व्यक्ति वैकुंठ में है वो भला गोलोक में क्यों जाएगा, क्योंकि उसके स्वरूप के अनुसार उसे एक स्थान मिला है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हरेक का स्वभाव, हरेक जीव का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है, स्वरूप होता है आत्मा का। कोई भले वैकुंठ का हो, कोई गोलोक का हो, गोलोक में किसी का स्वरूप हो, भिन्न भिन्न हो, बस भक्ति करते करते हरि नाम लेते लेते ये स्वरूप क्या है ये प्रकट हो जाएगा। इसमें हमारी बड़ी समस्या ये है कि इन भौतिक गुणों को कैसे पार करें। ये जो छह षड ऋतु हमारे हृदय में बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आदि, इनके ऊपर विजय प्राप्त करके भगवान के प्रति कोई भक्ति भाव कैसे प्राप्त करें, यह समस्या इस समय है। आगे वैकुंठ गोलोक वृंदावन वो फिर बहुत आगे की बात है, लेकिन हमें केवल एक लक्ष्य सामने रखना है। हालांकि ये लक्ष्य हमारे लिए बहुत ऊंचा है इस समय, फिर भी इस लक्ष्य को सामने रखते हुए हमें अपनी साधनों को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने सोचने का ढंग बढ़ाना चाहिए। और कोई प्रश्न? प्रश्न ये है कि क्या लक्ष्मी देवी के लिए हरिनाम का पथ उपलब्ध नहीं था? अवश्य हरिनाम भी शाश्वत है। हालांकि हरिनाम प्रत्येक युग में रहता है, फिर भी कलयुग में इसकी विशेषता है। अन्य युगों में भगवान को प्राप्त करने का पथ बताया हुआ होता है शास्त्रों में, और उसी पथ का पालन करना होता है शास्त्रों के अनुसार। और कलयुग के लिए क्योंकि लोगों की योग्यता नहीं है उन पथों को स्वीकार करने के लिए, इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा से एक बहुत सहज उपाय सबको दे दिया है हरि नाम लेने के लिए। तो अवश्य हरि नाम भी उपलब्ध था, परंतु चैतन्य महाप्रभु नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु तो दिव्य रूप से अपने नवद्वीप धाम में गोलोक वृंदावन में रहते हैं, परंतु अब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं, और क्या देने के लिए? हरिनाम के द्वारा इस ब्रज प्रेम को देने के लिए आते हैं। हरिनाम तो है, लेकिन हरिनाम का भाव ये हरे कृष्ण महामंत्र विशेष करके इस भाव से देने के लिए चैतन्य महाप्रभु हैं। अनर्पित चरिम चिरात करुण यावतीर्ण कलो समर्पयित मुन्नत उज्ज्वल रसायन से भक्ति श्रियम हरि पुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित कंदरे स्वरूपो भाषति नंदन। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अनर्पित चरिम चिरात कि जो अर्पण नहीं किया है भगवान ने अनेक अनेक वर्षों से, वो अब अर्पण करने आए हैं। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम, बहुत ऊंचा उन्नत उज्ज्वल रस, ये उज्ज्वल रस का तात्पर्य है वृंदावन का प्रेम, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है हमारे साथ, इसलिए हमारा पथ इतना आसान हो गया है। तो हरिनाम केवल हरिनाम नहीं, लेकिन हरिनाम इस भाव में संकीर्तन रस में, ताकि ब्रज का प्रेम प्राप्त हो जाए हरे कृष्ण महामंत्र से। अधिकतर जितने भी नाम भगवान के हैं वो सब वैकुंठ से संबंधित हैं, परंतु केवल वृंदावन के जो नाम हैं वो बहुत विशेष हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने आकर वृंदावन खोल दिया है सभी के लिए। प्रश्न ये है कि हमने सुना था कि गोपियां जो हैं वो श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं, तो ऐसे कैसे संभव है कि शिव जी नारद आदि ने स्नान करके या कुछ गोपियों को शरीर प्राप्त किया? देखिए गोपियां कई प्रकार की होती हैं। एक है केवल गोपियां नहीं, जितने भी ब्रजवासी हैं जो कृष्ण के साथ यहाँ लीला कर रहे थे वो कई प्रकार के हैं। दो मुख्य प्रकार कहे जा सकते हैं। एक वो नित्य सिद्ध जो कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन से उतर के आए, लीला करने के लिए और फिर कृष्ण के साथ वापस जाएंगे। तो वो उनके भी कई वर्ग हैं, लेकिन वो आए थे कृष्ण के साथ। परंतु दूसरे ऐसे हैं जो अपने साधना से सिद्धि की अवस्था को प्राप्त किए, जैसे दंडकारण्य के ऋषि हैं या जो उपनिषद है मूर्तिमान, इनको ऋषिचारी गोपी कहते हैं, या तो फिर श्रुतिचारी गोपी कहते हैं। तो इन्होंने अनेक वर्षों से, अनेक जन्मों से तपस्या की, भगवान का भजन किया, साधना किया, और इसलिए उनको यह अवसर मिला कि वो वृंदावन में गोपी या गोप बन पाए। नहीं, उनको अपने अलग अलग भाव के अनुसार उनको एक यहाँ ब्रज में जन्म मिला है किसी शरीर में। वो शिव जी के लिए था, नारद मुनि के लिए था। वो वृंदा देवी की बात थी नारद मुनि के लिए। नारद मुनि को वृंदा देवी ने आदेश दिया था कि जाओ कुसुम सरोवर में स्नान करो और फिर तुम राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर पाओगे। हाँ, प्रश्न ये है कि ऐसे कहा जाता है कि जो बिल्वभवन में आते भी हैं तो ब्रह्मलोक के निवासियों के लिए पूजनीय होते हैं, और हम लोग वृंदावन में रहते हैं तो इस अवसर का पूरा फायदा कैसे उठाना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम कहाँ ठहरे हुए हैं, कहाँ रह रहे हैं। हम वृंदावन में ठहरे हैं, किसी साधारण स्थान में नहीं ठहरे हैं। ये वृंदावन क्या है? उस वृंदावन से अभिन्न है। यहाँ श्री कृष्ण अभी भी इस समय नित्य रूप से यहाँ लीला कर रहे हैं। ये चिन्मय धाम है, चिंतामणि धाम है। तो कितने गंभीरता से हमें हमारी भक्ति को करना चाहिए, ये सब हमें ख्याल रखना चाहिए जब हम वृंदावन में रहते हैं। जिस प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम भक्त क्यों बने हैं, हम ब्रह्मचारी क्यों बने हैं। हमेशा याद रखना चाहिए ताकि हम इधर उधर कहीं भटक न जाएं। तो जब उद्देश्य को हम हमेशा याद करते हैं और जिस स्थान में हम हैं, जिस स्थिति में हैं, उसको याद रख के हम सोचते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं, अपने भाग्य के बारे में भी विचार करते हैं, तो फिर हम सही रास्ते से चलते जाएंगे। याद रखना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। वृंदावन में वास करने का मौका मिला, भगवान कृष्ण की सेवा और भक्ति करने का मौका मिला, हरिनाम यहाँ लेने का मौका मिला है। ये अवसर कितने लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए हमारा अहो सौभाग्य है, तो इसका पूरा पूरा सही तरह से लाभ उठाना चाहिए हमें। हाँ, किसने? प्रश्न ये है कि जो ऐसे उन्होंने पढ़ा है कि जो वृंदावन में रहते हैं, मृत्यु के बाद वो गोलोक वृंदावन चले जाते हैं, तो क्या इसमें कोई चेतना का कोई सवाल नहीं है? क्या इसमें कर्मों का कोई सवाल नहीं है? है अवश्य। यदि कोई वृंदावन में रह के बहुत सारे पाप आदि अपराध करता है, तो ऐसे श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि उसे ब्रज में ही एक ऐसे निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है, जैसे कुत्ता है, सूअर है और बंदर है। ये सब कौन है? ये बंदर वगैरह कौन है, कुत्ते यहाँ के? कोई साधारण पशु नहीं है ये। ये सब यहाँ ब्रज पिछले जन्मों में यहाँ रह के कोई अपराध किए हैं इन्होंने, धाम के प्रति अपराध किया है, और इस इसलिए उनको ये एक शरीर मिला है इस समय, जिसमें कि अपने अपराधों से, पूर्वकृत अपराधों से वो मुक्त हो सके। परंतु ईश्वर प्रभुपाद समझाते हैं, क्योंकि वो ब्रज के रज से स्पर्श करते हैं सदैव, ये रज उनको शुद्ध कर देता है, और इस पशु जन्म के बाद फिर वो भगवान के धाम में चले जाते हैं। परंतु भक्त को चाहिए कि वो इस रास्ते को न अपनाकर सीधे रास्ते को अपनाएं, जो कि सेवा का रास्ता है। अनुकूल भाव से वो भगवान के धाम में चले जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं।
अपने लेक्चर की शुरुआत में कहा था कि कृष्ण को केले के छिलके खिला रहे थे, तो कौन था?
विदुर की पत्नी थी जो केले की छिलके खिला रहे थे, क्योंकि उनका मन इतना आश्चर्य के मारे या कि भगवान आए हैं यहाँ पर, इतने हड़बड़ा गए थे कि उनको पता नहीं चला कि वो क्या कर रही है। केले पैक रहे थे, केले की छिलके खिला रहे थे और भगवान भी खाए जा रहे थे केले के छिलके, क्योंकि वो तो बहुत कोई चीज खाते ही नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं। तो उसने देखा कि छिलके के अंदर बहुत प्रेम है, भक्ति है, तो ले लिया।
ऐसी लीला उद्धव जी के साथ में भी है या कोई और देवी के साथ भी है लीला?
हमने तो नहीं सुना है।
प्रभु जी, एक बार प्रवचन में परम पूज्य राधारमण महाराज बता रहे थे कि भक्ति रसा मुसिंधु में ऐसे लिखा गया है कि कम से कम दो जन्म लगते हैं किसी साधक को भगवान के धाम जब प्रत्यावर्तन करते हैं। तो जो साधक वृंदावन में रहकर साधन भोजन करते हैं, क्या वो अगर वो प्रामाणिक से भक्ति करते हैं तो एक जन्म में वो भगवान के धाम जा सकते हैं?
ये पहला जन्म है या दूसरा जन्म पता नहीं ना हमारा। इसलिए हमें केवल अपना साधन करना चाहिए अच्छी तरह से। अब आगे भगवान के हाथ में, भगवान जब भी हमें ले जाना चाहे तब ले जाएंगे। भगवान कहेंगे कि यहाँ आओ कृष्ण बलराम मंदिर में, और अगले जन्म में सेवा करना है तुम्हें, तुम्हें देखभाल करना है, बहुत मंदिर में सेवा की आवश्यकता है, कौन सेवा करेगा? यदि तुम पुनर्जन्म में उधर रहे हो तो ठीक है, अगर वो भगवान चाहते हैं तो तैयार है। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, न केवल कि उनको गोलोक वृंदावन जाने की इच्छा होती है। अगर गोलोक वृंदावन जाने की इच्छा भी है तो वो भी केवल सेवा के लिए ही, अपने भोग के लिए नहीं, कि वहां जाऊंगा तो इतना आनंद से रहूंगा, यहाँ कोई दुनिया की परेशानी नहीं रहेगी, यहाँ कितने समस्याएं हैं वहां समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, वहां ना भूख लगती है, ना प्यास लगता है, ना ठंडी लगती है, ना गर्मी लगता है, ना कुछ, बड़ा आराम का जीवन है। नहीं, सेवा भाव का प्राधान्य है। जो भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता दिलाता है वही हम करते हैं। तो चाहे हम इस जन्म के अंत में जाएं, जब भी भगवान ले जाए, हमें तो यही देखना है कि हम किस प्रकार से अच्छे ढंग से हमारी भक्ति करें और उनको प्रसन्न करें।
As we are discussing this Vrindavan is not different from the spiritual world. But we devotees sometimes go out from Vrindavan, coming again to Vrindavan, go out from coming again. How can we understand that?
नहीं, प्रश्न ये है कि भगवान कहते हैं गीता में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम, कि एक बार कोई मेरे धाम में आता है तो लौट के नहीं जाता। तो हम लोग इस वृंदावन से अंदर बाहर करते रहते हैं क्या? तो भगवान तो उस तरह भी वृंदावन की बात कर रहे हैं। नॉट डिफरेंट, यस, बट इज रेफरिंग टू दैट वृंदावन। एक बार बहुत जन्म चक्कर से छूट कर व्यक्ति चले जाता है उस वृंदावन में, तो फिर लौट के नहीं आता। या तो फिर इस वृंदावन में भी हो लेकिन वास्तव में वृंदावन हमारे चित्त में प्रकट हो गया हो, तो फिर हम जहां भी जाएंगे वृंदावन में ही रहेंगे, फिर वृंदावन से दूर नहीं जाएंगे। अर्थात जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तब फिर कोई माया का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो सकता। चेतना के स्तर पर भी ये सही है, ठीक है। तो भी निष्कर्ष यही था कि हम सबको नाम संकीर्तन करना चाहिए। कभी थोड़ी देर नाम संकीर्तन करते हैं या क्या प्रोग्राम है अभी? नाम संकीर्तन करके प्रसाद लेना है, प्रसाद लेके फिर थोड़ा ताकत मिलेगी तब संकीर्तन करना है। कीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा। चलिए।